स्टोरी पढ़ने के बाद चैप्टर को 5-स्टार रेटिंग जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट मुझे आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। जितनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो होगा उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानी लाती रहेंगी। आभा आस्तिक को संभाल रही थी। आस्तिक दर्द से चिल्ला रहा था और आभा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बस यही कह रहा था कि अरुणिमा को यहां से जाने के लिए कहो, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरुणिमा का होना ही उसे दर्द दे रहा था, तकलीफ दे रहा था। आभा ये सब देख रही थी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए अरुणिमा की तरफ देखा और बोली, भाभी प्लीज आप अभी जाइए यहां से। आप देख नहीं रही हो भाई की हालत कितनी खराब हो रही है, आप प्लीज यहां से जाइए। अरुणिमा खुद आस्तिक की ये हालत नहीं देख पा रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो तेज कदमों से कमरे से निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए वो अपने कमरे में पहुंची और एक झटके से दरवाजा बंद कर लिया। वो बेड पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। आखिर उसकी गलती क्या थी? ऐसा क्या कर दिया था उसने जो आस्तिक उसे इस तरह ट्रीट कर रहा था? उसने तो हमेशा आस्तिक की देखभाल ही की थी, हमेशा उसे संभाला था। पिछले कुछ दिनों से जब वो दर्द में था, तड़प रहा था, अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान था, तब भी अरुणिमा ही थी जो उसके पास थी, उसे सहारा दे रही थी। ये अलग बात थी कि अरुणिमा ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि आस्तिक उसे कहे कि उसका होना ही उसे दर्द दे रहा है। अरुणिमा खुद यहां नहीं रहना चाहती थी, वो खुद आस्तिक से दूर जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? पहले तो उसने सोचा था कि अपने माता पिता के पास चली जाएगी, लेकिन जब से उसने अपनी माँ का व्यवहार देखा था उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। ऊपर से उसके पापा की हालत और उनकी कंपनी की स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में अरुणिमा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब बस यही सोच रही थी कि किसी तरीके से आस्तिक का विश्वास जीतकर उसे अपनी प्रेगनेंसी के लिए कन्विंस कर सके। वो आस्तिक से कहेगी कि उसे इस बच्चे को रखने की इजाज़त दे दे। वो कभी भी इस बच्चे का बोझ आस्तिक के ऊपर नहीं डालेगी। अगर आस्तिक चाहेगा तो ये बच्चा कभी उसकी नज़रों के सामने भी नहीं आएगा, लेकिन वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगी। इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से आस्तिक के साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी और इस रिश्ते को संभालने के बारे में भी सोच रही थी। उसे मालूम था कि आस्तिक से नफरत निकालना नामुमकिन है, और अगर उसने कोशिश की तो आस्तिक उसे बहुत बुरी मौत देगा, और इस वक्त वो मौत को अपना नहीं सकती थी। उसे जीना था, अपने बच्चों के लिए जीना था, लेकिन जब भी वो कोशिश करती थी आस्तिक उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब कर देता था। अरुणिमा अपने मुंह पर हाथ रखे बस रोए जा रही थी और जो कुछ हो रहा था उसके बारे में सोच रही थी। काफी देर बाद वो थोड़ी शांत हुई। उसने पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में अब भी आस्तिक की बातें ही घूम रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुणिमा चौंक गई और उसके दिल में डर समा गया कि कहीं आस्तिक तो नहीं आ गया। लेकिन अगले ही पल उसे आभा की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं हूं आभा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरुणिमा ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। उसने जल्दी से अपने बाल समेटे और बेड पर बैठ गई। धीरे से बोली, हाँ आभा दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ सकती हो। दरवाजा खुला और आभा अंदर आई। वो अरुणिमा के पास आकर बैठी। अरुणिमा ने उसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आस्तिक ठीक है ना? आभा के चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी भाई अब ठीक है, वो सो रहे हैं। फिर एक पल चुप रहकर बोली, भाभी आपसे एक बात पूछूं? अरुणिमा जो अब भी चिंता में थी उसने अपने चेहरे को इधर उधर घुमाकर आभा से नजरें चुराते हुए कहा, हाँ पूछो ना, क्या बात है? भाभी क्या भाई आपके साथ हमेशा ऐसे ही पेश आते हैं? क्या वो हमेशा आपसे ऐसे ही बात करते हैं? आभा ने अपना सवाल अरुणिमा के सामने रखा, जिसे सुनकर अरुणिमा के दिल में बेचैनी सी हो गई। वो जानती थी कि आभा आस्तिक से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। पूरे रायचंद परिवार में आभा सिर्फ आस्तिक पर ही निर्भर थी। उसने जल्दी से खुद को सामान्य किया और एक झूठी मुस्कान के साथ खुद को ही झूठ बोलते हुए आभा से कहा, अरे नहीं आभा ये क्या कह रही हो, बिल्कुल भी नहीं, आस्तिक मेरे साथ कभी भी ऐसे बात नहीं करते, वो तो हमेशा मुझसे अच्छे से ही पेश आते हैं। आज उनकी तबीयत खराब है, तुमने देखा नहीं वो कितने परेशान है, शायद इसी वजह से उन्होंने मुझसे ऐसे बात की है, वरना वो मेरे साथ कभी ऐसे पेश नहीं आते। और तुम देखना जब आस्तिक ठीक हो जाएंगे ना और उन्हें याद आएगा कि उन्होंने क्या किया है तो वो मुझसे माफी भी मांगेंगे। आभा उसकी बात सुनती है और उसके चेहरे पर एक हल्की मजाकिया मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से हंसते हुए कहती है, भाई और माफी। अरुणिमा को समझ आ गया था कि उसका झूठ आभा के सामने आ चुका है। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, मैं जानती हूँ आस्तिक के लिए माफी मांगना और अपनी गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं ना, तो मुझे मनाने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेते हैं। हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं और प्लीज इस बारे में घर पर किसी को मत बताना। आभा अरुणिमा के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर कभी कोई परेशानी होगी या कुछ भी बात होगी तो आप मुझे बताएंगे। भाभी, आपको मेरी कसम है, अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर याद करेंगे। आभा की बात सुनकर अरुणिमा का दिल चीर सा जाता है। वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए वो आभा को अपनी हालत के बारे में नहीं बता सकती। उसने एक पल को सोचा कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आभा को बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर उसने कुछ बताया तो अगले ही पल ये बात पूरे मेंशन में आग की तरह फैल जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं, और मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है मेरे पास। तुम परेशान मत हो, बस अपने काम पर ध्यान दो। आभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो सिर हिलाकर उठते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और एक बार भाई को भी देख लूंगी। अरुणिमा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। आभा दरवाजे तक आकर रुक जाती है और अरुणिमा को देखते हुए कहती है, भाभी एक बात कहूँ। अरुणिमा डर जाती है कि कहीं आभा फिर से कोई ऐसी बात ना कर दे जिसे सुनकर उसे झूठ बोलना पड़े। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, बोलो ना। आभा हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, अरे भाभी आप डर क्यों रही हैं, मैं तो बस नॉर्मली कह रही थी कि एक्सरसाइज किया कीजिए, घर में जिम भी है, आप उसे इस्तेमाल किया कीजिए, मुझे लग रहा है आप मोटी हो रही हैं। अरुणिमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके मुंह से सिर्फ हवा निकलती है। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लिया और घबराए हुए स्वर में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस बैंगलोर में रहते हुए सिर्फ खाना और घूमना ही था तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला। वैसे थैंक्स याद दिलाने के लिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ।
आभा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी जाते ही अरुणिमा की बंद हुई धड़कनें दोबारा चलने लगती हैं। वो घबरा जाती है। अगर आभा को शक हो जाता कि उसका वजन प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहा है तो वो क्या करती, लेकिन ये कोई राहत का पल नहीं था बल्कि एक और टेंशन की शुरुआत थी। आज उसका हल्का सा मोटापा आभा ने नोटिस कर लिया था। धीरे धीरे उसका वजन और बढ़ेगा और लोगों को, खासकर आस्तिक को, जरूर पता चल जाएगा। अरुणिमा को जल्दी से कुछ करना था, वो ज्यादा समय तक इस बात को छुपा नहीं सकती थी। शाम के वक्त जब आभा आस्तिक के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि आस्तिक अपने कमरे में बैठा है और फोन पर किसी से बात कर रहा है। आभा को देखकर आस्तिक उसे अंदर आने का इशारा करता है। आभा अंदर आती है, आस्तिक अपनी बात खत्म करते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और आभा से कहता है, जब मैं बैंगलोर में था और यहाँ काम पेंडिंग था तो तुमने अपनी जगह बेला को क्यों भेजा, विक्रम के साथ सिल्वर ग्रुप का टेंडर फाइल करने के लिए? आस्तिक बिल्कुल बॉस के मूड में था और अपनी एम्प्लॉई को बॉस बनकर डांट रहा था, जिसे सुनकर आभा ने धीरे से कहा, सॉरी भाई, पता है कि मुझे इसके लिए पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। भाई अभी यहाँ नहीं थे और नीरज भी आपकी पेंडिंग मीटिंग्स को हैंडल कर रहा था। ऐसे में अगर मैं कंपनी में नहीं होती तो बाकी का काम कौन हैंडल करता? ऊपर से विक्रम का बार बार फोन आ रहा था कि सिल्वर ग्रुप के टेंडर का ओपन होने का टाइम हो गया है और इसके लिए उसे किसी के साथ जाना होगा। आप यहाँ थे नहीं, नीरज भी बिजी था और मैं कंपनी को अकेले संभाल रही थी, इसलिए मैंने बीलादी को भेज दिया। वो भी तो कंपनी का हिस्सा है, सिल्वर ग्रुप में उनके भी तो शेयर्स हैं। आस्तिक अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था बेला को भेजने के लिए? बेला को कुछ भी नहीं पता कि इस मामले में करना क्या है। भले ही बेला के शेयर्स सिल्वर ग्रुप में हैं, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा काबिलियत रखती हो। तुम्हें क्या लगता है अपने एब्सेंट में मैंने क्यों कहा था कि कंपनी तुम संभालना? क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी। तुम मेरी बहन बाद में हो, कंपनी के एम्प्लॉई पहले हो। बेला में भी अच्छी काबिलियत है लेकिन वो तुमसे बेहतर नहीं है, इसीलिए तुम अभी इसी वक्त शिमला के लिए निकलो। आभा एकदम से चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम और बेलादी पहले से ही शिमला में हैं, ऐसे में मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? एक प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे लोगों का जाना जरूरी भी नहीं है। और कंपनी? मैं वापस आ गया हूँ तो कंपनी मैं देख लूंगा, बाकी सारे पेंडिंग काम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर ग्रुप के साथ जो हमारा टेंडर है उसे कम्प्लीट होना बहुत जरूरी है, इसके लिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। विक्रम और बेला दोनों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और ये बात मैं तुम्हें एक भाई बनकर नहीं, एक बॉस बनकर कह रहा हूँ। अभी इसी वक्त शिमला के लिए निकलो,
तुम्हारा टिकट मैं बुक करवा रहा हूँ, अपना सामान पैक करो और शिमला के ले जाओ, और जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, खबरदार जो तुम वहाँ से वापस आई। बेला का रिटर्न टिकट मैं यहीं से कैंसिल करवा रहा हूँ, पता नहीं वो लड़की वहाँ पर क्या क्या कचरा फैलाए बैठी है। मीटिंग रूम में मीटिंग से ज़्यादा अपने नेल पेंट पर ध्यान होता है उसका।